अध्याय सात हिंदू संस्कार एवं विशेषताएं महत्व उपनयन विवाह एवं अन्य भूमिका। संस्कार भी हिंदू सामाजिक संगठन के मूल तत्वों में है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार संस्कारों का उदय सुदीर्घ अतीत में हुआ था और काल क्रम से अनेक परिवर्तनों के साथ वे आज तक जीवित हैं। व्यक्तिक भौतिक और आध्यात्मिक विकास तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति और अशुभ प्रभावों से सुरक्षा के लिए हिंदू सामाजिक संगठन के एक मौलिक तत्व के रूप में संस्कारों को स्वीकार किया गया। व्यक्ति को आंतरिक रूप से पवित्र बनाने के लिए हिंदू सामाजिक संगठन में संस्कारों का एक तत्व के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। प्रत्येक समाज में कुछ कर्मकांड, अनुष्ठान, प्रथाएं और धार्मिक विश्वास होते हैं जो समाज या जो संस्कृति जितनी ही प्राचीन होती है उसमें कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों का उतना ही महत्व होता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था प्राचीनतम व्यवस्था का हिंदू संस्कृति है, अतः उसमें संस्कारों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। हिंदू संस्कार केवल कर्म कांड और धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं अपितु उनसे भी अधिक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये पूर्णतः धार्मिक नहीं होते बल्कि सामाजिक धार्मिक प्रत्यक्ष है जिसको हमारी सांस्कृतिक जीवन से अभिव्यक्ति होती है। संस्कार हिंदू सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। हिंदू दर्शन द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, आंतरिक शुद्धता तथा व्यक्ति के समाजीकरण पर बल देने के कारण हिंदू सामाजिक संगठन में संस्कारों के अस्तित्व का एक लंबा इतिहास है। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से भी संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करते हैं। प्रश्न उठता है कि संस्कार है क्या तथा इसके कितने रूप हैं? संस्कार का अर्थ और परिभाषा। धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाकलापों से बढ़कर होने के कारण संस्कारों का एक विशिष्ट अर्थ है। आंगल भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं जो समान अर्थ का बोध करता हो। सेरेमोनी, राइट्स तथा सेक्रेमेंट, इनमें से कोई भी शब्द संस्कार की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुसलमानों में सुन्नत तथा ईसाइयों में बपतिस्मा जैसे संस्कार हैं, परंतु ये भी उस अर्थ को बोध नहीं कराते हैं जो हिंदू संस्कारों का विशेष अर्थ है। शाब्दिक दृष्टि से शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, व्याकरण संबंधी शुद्धि, संस्करण, बुद्धि परिष्करण, पूर्ण करना, स्मृति चिन्ह तथा पवित्र करने वाले अनुष्ठान संस्कार के अर्थ हैं। धार्मिक तथा दार्शनिक दृष्टि से संस्कार का अभिप्राय उस धार्मिक क्रिया अथवा अनुष्ठान से है जो मनुष्य की शुद्धता तथा शारीरिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किया जाता है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनसे शुद्धता प्राप्त कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार हिंदू संस्कारों में अनेक धार्मिक विधि विधान, उनके सहवर्ती नियम तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हैं, जिनका उद्देश्य केवल औपचारिक दैनिक संस्कार ही ना होकर संस्कारित व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार तथा उसकी पूर्णता और शुद्धि भी है। मोटे तौर पर व्यक्ति को पवित्र बनाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों अथवा प्रतीकात्मक क्रियाकलापों को संस्कार कहा जाता है। इन अर्थों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। नंबर एक, संस्कार धार्मिक अनुष्ठान अथवा क्रियाकलाप है। नंबर दो, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार और शुद्धि के लिए किए जाते हैं। नंबर तीन, ये ऐसे धार्मिक अनुष्ठान है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से शुद्धता प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का विकास कर उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। हिंदू जीवन में प्रमुख संस्कार। हिंदू संस्कारों के प्रमुख प्रकार या उनकी संख्या। हिंदू संस्कारों के प्रकार या उनकी संख्या के बारे में मतैक्य नहीं है। गिहा सूत्र के अनुसार 11, गौतम सूत्र के अनुसार 40, मनु के अनुसार 13 तथा स्मृति चंद्रिका के अनुसार 16 हैं। मुख्य रूप से हिंदू संस्कारों की संख्या 16 है। उनमें इनके नाम इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सिमंतो अन्यन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन चूड़ा कर्म कर्ण भेद उपनयन वेदा आरंभ समावर्तन संस्कार विवाह वानप्रस्थ संन्यास और अंत्येष्टि। नंबर एक गर्भाधान। यह मनुष्य के जन्म के पूर्व का संस्कार है। हिंदू धर्म के अनुसार रति क्रिया वासना की तृप्ति के लिए नहीं की जाती है। यह गर्भाधान संस्कार को संपन्न करने के साधन रूप में है। पृथ्वी ऋण से ऊढ़ होने तथा समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए निमित्त संतानोत्पादन इस संस्कार का लक्ष्य है। इस संस्कार को संपन्न करने के कुछ नियम है। पति को संतानोत्पादन का संकल्प कर अपनी पत्नी से यौन संबंध स्थापित करना चाहिए। इस संबंध के पूर्व जरूरी है कि पत्नी स्नानादि से शुद्ध हो तथा वह भी संतानोत्पादन के विचार से प्रेरित हो। ऋतु स्नान से शुद्ध हुई पत्नी के साथ पति को संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से यौन संबंध स्थापित करना चाहिए। यौन संबंध के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ ने प्रति मास पत्नी के ऋतु स्नान के बाद पति पत्नी के यौन संबंध को आवश्यक बताया है। सुश्रुत के अनुसार गर्भाधान के समय पत्नी की उम्र कम से कम 16 तथा पति की 25 वर्ष होनी चाहिए। हिंदू शास्त्रकारों ने यौन संबंध के पूर्व कुछ प्रविधान किए हैं। ऋतुमती होने के 4 दिन बाद पत्नी को स्नान कर शुद्ध होना चाहिए। तत्पश्चात पति पत्नी को यज्ञ करना चाहिए। पति को दक्षिण मुख तथा पत्नी को उसकी बाई तरफ बैठना चाहिए। उन्हें उचित रूप से हवन कर एक पहर रात बीत जाने पर गर्भाधान संस्कार संपन्न करना चाहिए। इस संस्कार से यह स्पष्ट हो जाता है कि गर्भाधान के पश्चात यौन संबंध नहीं करना चाहिए। यद्यपि यौन संबंध से यौन की तृप्ति होती है तथापि हिंदू धर्म के अनुसार यह मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य संतानोत्पादन के लिए गर्भाधान करना है। इस संस्कार के अनुसार गर्भाधान एक सामाजिक कर्तव्य है जिसे पत्नी पति को पूरा करना चाहिए। यह संस्कार स्त्री पुरुष को वासना को संयमित कर उन्हें कर्तव्य पालन की तरफ प्रेरित करता है। यह प्रथम संस्कार है। नंबर 2 पुंसवन संस्कार। यह दूसरा संस्कार है जो गर्भाधान के पश्चात किया जाता है। वीर तथा गुणी पुत्र प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को गर्भाधान के पश्चात संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें पुत्र वीर और गुड़ी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ही इस संस्कार की व्यवस्था की गई है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे मास से इसे करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गर्भाधान के दूसरे मास में पत्नी को विधि पूर्वक स्नान कर व्रत करना चाहिए। इसके बाद 9 वस्त्र धारण कर मंत्रो उच्चारण के साथ वट वृक्ष की छाल अथवा पत्तियों का रस दाहिने नाक से सूंघना चाहिए। इसके पश्चात उसे आहार विहार के अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ लोग पहली बार इसे आवश्यक मानते हैं। इस संस्कार के उद्देश्य पर ध्यान देने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र प्राप्ति के पूर्व तक इस संस्कार को करना चाहिए। इस संस्कार में स्त्री से कहा जाता है कि नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार। यह भी गर्भाधान के पश्चात का ही संस्कार है। इसे गर्भाधान के 4th महीने में पूर्ण करने का विधान है। इसके अंतर्गत पति शुक्ल पक्ष में जबकि चंद्रमा श्रवण आदि पुल्लिंग नक्षत्रों से युक्त होता है, पत्नी के केशों में सुगंधित तेल डालकर सुंदर ढंग से केश विन्यास करता है। इसके पश्चात वह पत्नी को यज्ञशाला में लाता है जहाँ संगीत का कार्यक्रम होता है। गर्भवती पत्नी यज्ञ में खिचड़ी की आहुति डालकर उसे खाती है। वहाँ उपस्थित बूढ़ी स्त्रियाँ उसे वीर पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद देती हैं। सीमंतोन्नयन का अर्थ है स्त्री के केशों को ऊपर विभाजित करना। इस संस्कार का उल्लेख अश्वलायन सांखायन हिरण्य केशीय बोधायन भारद्वज गोमिल खादीर पारस्कर काठक तथा वैखानस आदि गृह सूत्रों में प्राप्त होता है। याज्ञवल्क तथा व्यास मुनि ने इस संस्कार को श्रीमान संस्कार के नाम से संबोधित किया है। अपस्तंभ गृह सूत्र और भारद्वज गृह सूत्र में इसको पुंसवन से पहले का संस्कार स्वीकार किया है। इस संस्कार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि स्त्री को दुष्ट शक्तियों से बचाया जाए। अश्वलायन का कहना है कि गर्भाधान के 4th मास में सीमंतों नयनकित करना चाहिए। इन संस्कार के आरंभ में मातृ पूजन किया जाता है। इसके बाद स्त्री अग्नि शिखा के पश्चिम में आसन पर बैठती है और पति उदुम्बर के सम संख्यक कच्चे फले के गुच्छे कुश के तीनों गुच्छों तीन शाही के कांटों के साथ भूर्वह स्वः का मंत्र पाठ करते हुए पत्नी के बालों को ऊपर की ओर संवारता है तथा उदुम्बर की शाखा गले में बांध देता है। इसके बाद पति पत्नी से चावल की राशि तिल और घी की तरफ देखने तथा संतति पशु सौभाग्य और अपने दीर्घ आयु की कामना के लिए करता था। डॉक्टर काड़े का कहना है कि इस संस्कार का केवल सामाजिक तथा उत्सविक महत्व है, क्योंकि यह केवल गर्भिणी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। गृह सूत्रों में इसके संपादन के काल के बारे में एक मत नहीं है, जैसे काठिक गृह सूत्र में तीसरे, मानव गृह सूत्र में तीसरे, छठे तथा आठवें, आश्वलायन गृह सूत्र में चौथे तथा पारस्कर याज्ञवल्क और विष्णु धर्म सूत्र में इसके लिए आठवें, आश्वलायन गृह सूत्र में चौथे, पारस्कर याज्ञवल्क और विष्णु धर्म सूत्र ने इसके लिए आठवें मास को उचित ठहराया है। शंख मन ने स्मृति चंद्रिका में लिखा है, सीमंतो अन्यन संस्कार भूड़ के हिलने डुलने से लेकर जन्म के समय तक किया जा सकता है। हिरण्यकेशी का कहना है कि इस संस्कार को किसी गोलाकार स्थान पर बैठकर संपादित करना चाहिए, लेकिन पारस्कर और अश्वलायन का कहना है कि स्त्री को बैल के चमड़े पर बैठना चाहिए और पारस्कर ने मुलायम आसन पर बैठने की बात कही है। पके चावल भात पर घी तथा तिल रखकर उसी की आहुति दी जाती है तथा गर्भवती स्त्री से प्रश्न किया जाता है, तुम क्या देख रही हो? तो स्त्री जवाब देती है, मैं संतान देख रही हूँ। मनु ने इस संस्कार का उल्लेख कहीं नहीं किया है। बोधायन पराशकर का मत है कि केवल एक गर्भाधान के समय यह करना चाहिए, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि सभी गर्भाधानों में यह संस्कार किया जाना चाहिए। अवीरो जायता पुत्र अस्ते दशमस्य, अर्थात 10 मास तेरे गर्भ में रहने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो। श्री प्रभु के अनुसार इस संस्कार का उद्देश्य गर्भ रक्षण करने वाले देवी और देवताओं को प्रसन्न करना है। वंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्र की कामना की जाती है। पुंसवन शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है लड़के को जन्म देना। इस संस्कार का संपादन इसलिए किया गया है कि जिससे वीर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। संस्कार प्रकाश में ऐसा लिखा है कि पुंसवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए है। अश्वलायन गृह सूत्र का कहना है कि गर्भधारण के तीसरे महीने इस संस्कार का संपादन करना चाहिए। पुनर्वस नक्षत्र में उपवास कर लेने के बाद स्त्री अपने रंग के बछड़े वाले गाय के दही के साथ 2 बीज सेम तथा 1 दाना जौ खाती है। यह क्रिया वह 3 बार करती है। स्त्री का पति उससे 3 बार यह प्रश्न करता है कि तुम क्या पी रही हो? तब स्त्री उत्तर देती है, पुंसवन अर्थात पुत्र की प्राप्ति। दूसरे स्थान पर लिखा है कि इस संस्कार में स्त्री नहाने के बाद नए वस्त्र धारण करती है और व्रत रखती है। रात में बरगद की छाल का रस नाक के दाहिने छेद में मंत्र का उच्चारण करते हुए डालना चाहिए। लोगों का कहना है कि प्रत्येक संतान के लिए ऐसा करना चाहिए, जबकि कुछ ग्रंथ यह कहते हैं कि केवल पहले संतान के लिए ही ऐसा करना चाहिए। पुंसवन संस्कार कब किया जाए, इस संबंध में भी अनेक मत हैं कि आप अस्तम्भ अपस्तम्भ गृह सूत्र, हिरण्यकेशी गृह सूत्र तथा भारद्वाज गृह सूत्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुंसवन संस्कार का संपादन सीमंतोन्नयन के उपरांत करना चाहिए। याज्ञवल्क पराशकर विष्णु धर्म सूत्र इत्यादि में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब भ्रूण हिलने डुलने लगता है तब यह प्रक्रिया की करनी चाहिए। काठक गृहसूत्र के अनुसार गर्भाधान के पांचवे तथा मानव गृहसूत्र के अनुसार आठवें मास के बाद पुंसवन संस्कार किया जाना चाहिए। डॉक्टर काणे का कहना है कि पुंसवन संस्कार में धार्मिक प्रतीकात्मक औषधि संबंधी तत्व पाए जाते हैं। नंबर चार, जात कर्म संस्कार। पुत्र जन्म के उपरांत यह संस्कार किया जाता है। तैतरीय संहिता के अनुसार जब किसी के पुत्र पैदा हो तो उसे 22 विभिन्न पात्रों में पकी हुई रोटी को बल्कि वैश्वानर को देनी चाहिए। वह पुत्र जिसके लिए यह कृत्य किया जाता है पवित्र गौरवपूर्ण धन धान से परिपूर्ण तथा पशुओं वाला होता है। सवर का कथन है कि इसे जन्म से 10 दिनों के बाद पूर्णमासी से अमावस्या के दिन करना चाहिए। बृहदारण्यक को उपनिषद में लिखा है कि पुत्र उत्पन्न होने के बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद बच्चे को किसी की गोद में रखकर दही को घी से मिलाकर उसको कांसे के पात्र में रखकर मंत्र उच्चारण करके बच्चे के कान में 3 बार ध्वनि की जाती है। इसके बाद दही घृत तथा मधु को मिश्रित करके सोने के चम्मच से बच्चे को चटा दिया जाता है। डॉक्टर पीबी काणे का कहना है कि बृहदारण्यक को उपनिषद में जात कर्म के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर एक, दही और घी का मंत्रों के साथ होम। नंबर दो, बालक के दाहिने कान में वाक शब्द को 3 बार कहना। नंबर 3, सोने के चम्मच से बालक को दही एवं घी चटाना। नंबर 4, बच्चे को गुप्त नाम देना। नंबर 5, बच्चे को माँ के स्तन पर रखना। नंबर 6, माता को मंत्रों द्वारा संबोधित करना। शतपथ ब्राह्मण में एक बात और जोड़ दी गई है। 3 ब्राह्मणों द्वारा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर तथा ऊपर की दिशाओं में बालक के ऊपर सांस लेना। इस संस्कार में नीचे लिखे कृत्य भी आवश्यक हैं। नंबर 1, होम। नंबर 2, मेघाजनन। नंबर 3, आयुष्य। नंबर 4, अंसार्भ मर्सन। नंबर 5, मंत्र मातृभिमंत्रणा। नंबर 6, पंच ब्राह्मण स्थापन। नंबर 7, स्तन प्रतिधान। नंबर 8, देश भिमंत्रण। नंबर 9, बालक को नाम देना। 11, भूत प्रेतों को भगाना। नंबर 5, नामकरण संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य है बालक को एक नाम देना। उसका नाम देवताओं के नाम से संबंधित कर दिया है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इस संस्कार का विधिवत उल्लेख किया गया है। साधारण रूप से विचारकों का कथन है कि यह संस्कार जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन होना चाहिए। डॉक्टर काणे ने लिखा है कि आधुनिक काल में नामकरण जन्म के 12वें दिन बिना किसी वैदिक उच्चारण के कर लिया जाता है। स्त्रियां एकत्र होती हैं और पुरुषों से परामर्श करके नाम घोषित कर देती हैं। कहीं कहीं अब भी यह संस्कार विधिवत किया जाता है, किंतु अब इसका प्रचलन एक प्रकार से उठ गया है। श्रामण का मत है कि इस संस्कार के समय शिशु के 4 नाम रखे जाते हैं। नक्षत्र नाम, गुप्त नाम, पुकारने वाला नाम, कोई यज्ञ आदि संपादित करने वाला नाम। मनु ने नामकरण के संबंध में 2 नियमों का उल्लेख किया है। नंबर 1, ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णों के नाम के साथ एक उपपद हो जिससे प्रसन्नता, रक्षा, पुष्टि एवं पेशा का संकेत मिले। धर्मशास्त्र के लेखकों ने विधिवत यह संस्कार करने का आदेश दिया है। बच्चे को गोद में ले माता पति के दाहिने बैठती है। धान की भूसी कांसे के पात्र में छिड़क कर सड़ की लेखनी से श्री गणेशाय नमः लिखने के पश्चात बालक के 4 नामों को लिखती है, जैसे कुल देवता का नाम, मास का नाम, व्यवहारिक नाम, नक्षत्र नाम। किसी किसी स्थान पर लिखा है कि पिता बालक के कान में कहता है कि हे पुत्र, तुम केवल देवता का भक्त है और तेरा नाम ए है। तू अमुख मास में उत्पन्न हुआ है, अतः तेरा नाम ए है। तूने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, अतः तेरा नाम ए है, तथा तेरा नाम लौकिक नाम ए है। इस संस्कार के समय ब्राह्मणों तथा अन्य अतिथियों को भोजन कराया जाता है। नंबर 2, सभी वर्णों और व्यक्तियों का नाम शुभ सूचक ही रख जाना चाहिए। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। पार अस्कर ने गृहसूत्र में जन्म के चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार का विधान करने को कहा है। इस अवसर पर बालक को स्वच्छ पानी में नहलाकर उसको सुंदर वस्त्र पहनाकर यज्ञ वेदी के पास ले जाया जाता है। यज्ञ होने के उपरांत उसे थोड़ी देर तक शुद्ध वायु में भ्रमण कराया जाता है। दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। गोमिल खातिर बुधायन मानव तथा काठक सूत्रों में इसका वर्णन मिलता है। अधिकांश ग्रंथों के अनुसार इसे जन्म के चौथे मास में संपादित किया जाना चाहिए। इस पुराण के अनुसार इसे जन्म के 12वें दिन या चौथे मास में कर देना चाहिए। इस संस्कार में सर्वप्रथम बच्चे की सूर्य का दर्शन कराया जाता है और उसको घर के बाहर निकाला जाता है। पराशर गृहसूत्र में लिखा है कि पिता पुत्र को सूर्य की ओर दिखाता है और मंत्रों उच्चारण करता है। ब्राह्मणों के भोजन तथा शुभ सूचक श्लोकों के उच्चारण का विधान है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। स्मृतियों में इस संस्कार के निमित्त छठा महीना निश्चित किया गया है, लेकिन अश्वलायन संख्यायन अपस्तंभ पराशर काठक भारद्वाज मानव तथा वैखानस गृहसूत्रों में इस पर पर्याप्त उल्लेख किया गया है। काठक गृहसूत्र में छठे मास का समर्थन करता है। उस समय तक बच्चे का प्रथम दांत निकल आता है। सांखायन गृहसूत्र में लिखा है कि पिता को बकरे तीतर अथवा मछली का मांस या भात बनाकर दही घी तथा मधु में निकालकर भू भुव स्वह के उच्चारण के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। ऊपर जिन कथनों का उल्लेख किया गया है वे पुष्टता पूत प्रकाश तीक्ष्णता धन धान्य के प्रतीक है। अंत में पिता अग्नि में आहुतियां डालता है तथा वेद के 4 मंत्रों को पढ़ता है। शेष भोजन माता खा लेती हैं। इसमें भी ब्राह्मण तथा अतिथि को भोजन कराते हैं। नंबर 8, चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार को केशो छेदन या मुंडन भी कहते हैं। जन्म के तिथि वर्ष इसका संपादन किया जाता है। किसी शुभ मुहूर्त में मंदिर में सरिता अथवा तालाब के किनारे नाई बालों को काटता है। एक बाल कसोरे में रखे जाते हैं तथा जंगल में कसोरा गाड़ दिया जाता है। बाल कट जाने पर सिर पर मक्खन मलाई आदि लगाते हैं तथा बालक को स्वच्छ जल से नहला दिया जाता है। अंत में यज्ञ वेदी पर गुरुजन और ब्राह्मण लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। कुछ गृह सूत्रों जैसे पराशर तथा वैखानस आदि का कहना है कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी भी समय यह संस्कार संपादित किया जा सकता है। कटे हुए केश गौशाला में भी गाड़ने का विधान है। बोधायन के अनुसार प्रवरों की संख्या के बराबर ही केश छोड़े जाते हैं। डॉक्टर पीबी काले ने ही हारिस का संदर्भ देते हुए लिखा है, आजकल हिंदुओं का एक लक्षण सिखा है, किंतु कुछ शौकीन तबीयत के लोग सिखा रखने में सुखचाते हैं। केवल ऋषि ने लिखा है कि बिना यज्ञोपवीत तथा सिखा के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए। इनके अभाव में किया गया धार्मिक कृत्य ना के बराबर है। नंबर 9, कर्ण वेद संस्कार। यह जन्म के तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रातः काल बच्चे को स्नान आदि कराकर किसी स्वर्णकार या वैद्य द्वारा इसके कानों में छेद कराया जाता है। इसके बाद छिद्रों में सलाई पहना दी जाती है। नंबर 10, उपनयन संस्कार। उपनयन का शब्द शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना होता है। अब प्रश्न है किसके सन्निकट। इसका उत्तर है आचार्य के सन्निकट। इस संस्कार का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। ऋषि चरण से मुक्ति के लिए भी इस संस्कार की योजना की गई है। अश्वलायन गृहसूत्र के अनुसार ब्राह्मण कुमार का उपनयन आठवें वर्ष क्षत्रिय का ग्यारहवें वर्ष और वैश्यों का बारहवें वर्ष होना चाहिए। महीनों में 5 से 6 महीने उनके लिए उपयुक्त माने गए हैं तथा नक्षत्रों में हस्त्र चित्रा स्वाति पुण्य धनिष्ठा अश्वनी मेघ शिखा पुनर्वसु श्रवण तथा रेवती उपयुक्त बताए गए हैं। ब्रह्मचारी को 2 वस्त्र धारण करने की बात कही गई है, प्रथम ऊपरी भाग ढकने के लिए और दूसरा नीचे भाग का ढकने के लिए। डॉक्टर राजबलि पांडे के शब्दों में इस संस्कार के द्वारा दीक्षित व्यक्तियों की गणना द्विजों में की जाती है। संस्कारों प्रांत व्यक्ति कठोर रूप से एक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करके वेदा अभ्यास करता था। ब्रह्मचारी के लिए ज्ञानेन्द्रिय मंत्र आवश्यक था, यह वह यज्ञोपवीत धारण करने लगता था। डॉक्टर पांडे का कहना है कि भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व ही उनमें यह संस्कार प्रचलित था। अब तक ऊपर जितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है इनमें उपनयन संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपनयन 2 संस्कारों के बीच का चौखट है। इस चौखट के पहले मनुष्य प्रकृति जीवधारी के रूप में रहते हैं तथा इस चौखट के उस पार नैतिक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार है। सांस्कृतिक दृष्टि से उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। शिष्य गुरु के यहाँ अनुशासन में जीवन बिताकर इस संस्कार के विषय में जानकारी प्राप्त करता था, उसको योग्य नागरिक बनाया जाता था और वह अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने लगता था। केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि अन्य जातियों और धर्मों में भी इस प्रकार का विधान पाया जाता था। वास्तव में यह एक प्रकार से धार्मिक दीक्षा की विधि थी। बिना उपनयन के व्यक्ति शुद्ध होता था किंतु इससे वह द्विज कहलाता था। इसके फलस्वरूप उसे समाज में विशेषाधिकार एवं सुविधाएं मिलती थी। 3 उच्च वर्गों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक थे। वास्तव में यह एक प्रकार से हिंदुओं का विशाल साहित्य भंडार का प्रवेश मात्र था। इस संस्कार से शिक्षा का प्रसार और साहित्य की विशेष उन्नति हुई। उपनयन संस्कार के समय गुरु शिष्य की जो शिक्षाएं देते थे वह उसके जीवन की धरोहर बन जाती थी। उस समय आचार्य उनको आदेश देते थे, जो ब्रह्मचारी है बल ग्रहण करे, दिन में शयन ना करे, वाक संयम करे आदि। उपनयन संस्कार के समय शिक्षा का भी प्रावधान था, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति विनम्रता का पाठ पढ़ते थे। उपनयन संस्कार के समय बालक को संयमित जीवन व्यतीत करने का भी शिक्षा दी जाती थी। उपनयन के बाद द्वितीय जन्म हुआ माना जाता है। कुछ सभ्यताओं में मृत्यु हुए बिना दूसरे जन्म की संभावना नहीं दिखाई देती है। अतएव अंग छेद के द्वारा दूसरी मृत्यु करके नवीन प्रकार के जीवन में बालक को प्रवेश कराया जाता है। हमारे समाज में जो भी ज्ञान विज्ञान है अथवा पूर्व पुरुषों की जो भी धरोहर समाज को प्राप्त है उसको उसका हस्तांतरण करना भी अति आवश्यक है। यदि हस्तांतरण का कार्य ना किया जाए तो यह ज्ञान और विज्ञान आगे आने वाली संतति को प्राप्त ना हो सके। इस संस्कार द्वारा इन्हीं ज्ञान विज्ञानों को प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को सफलता पूर्वक व्यतीत करने योग्य हो जाता है यथा अगले जीवन को भी पवित्र बनाने की तैयारी करता है। यह कार्य चाहे सभ्य जाति हो अथवा असभ्य, किसी न किसी रूप में इस मार्ग से गुजरती है। पहले ही संस्कार के रूप में इसका पालन ना किया जाता हो, क्योंकि इस संस्कार का जो लक्ष्य है वह मानव जीवन तथा सामाजिक जीवन के लिए विशेष महत्व का है। इस संस्कार द्वारा व्यक्ति को संयमी जीवन बिताने के योग्य बनाया जाता है। उपवीत होकर व्यक्ति दूसरे जीवन में प्रवेश करता है, जिसका उपनयन होता है वह द्विज कहा जाता है। स्त्रियां तथा शूद्र संयम के योग्य नहीं समझे गए, जिससे उनका उपनयन नहीं होता। उच्चतर जीवन में उनके प्रवेश की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए उनको द्विज नहीं कहा गया। नंबर 11 विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के बाद व्यक्ति विद्या आरंभ करता है। पाठशाला में प्रवेश तथा विद्या अर्जन शुरू करने के लिए यह संपन्न किया जाता है। विधानानुसार बालक को सबसे पहले स्नान कराया जाता तथा उसे कौपीन और कटी वस्त्र धारण कराया जाता। आजकल सामान्य बालक को स्नान कराकर उसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद गुरु ग्रंथों के जरिए बालक विद्या रस्म का संस्कार शुरू करता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद वेदा आरंभ अर्थात वेद का अध्ययन आरंभ होता था। इसके संपन्न होने के बाद बालक ज्ञानार्जन के लिए गुरु के पास चला जाता था। गुरु के पास रहते हुए वह कौपीन कटी वस्त्र तथा उत्तरीय धारण किए रहता था। समावर्तन संस्कार के बाद वह उन्हें उतारता था। नंबर 12 समावर्तन संस्कार। आजकल सामान्यतः यह इस संस्कार का प्रचलन बंद हो गया है, क्योंकि आज ज्ञानार्जन का रूप परिवर्तित हो गया है। आज सामान्यतः विद्यार्थी गुरु के पास जंगलों में या उसके घर जाकर अध्ययन नहीं करते। आज स्कूल और कॉलेजों में अध्ययन की व्यवस्था है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विद्या अध्ययन पूरा हो जाने के बाद यह संस्कार संपन्न किया जाना चाहिए। यह गुरुकुल से निवृत्त या शिक्षा के समावर्तन का द्योतक है। जब ब्रह्मचारी विद्यार्थी विद्या अध्ययन की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए जाता है, तो इस संस्कार का विद्या अध्ययन काल का उसका वस्त्र कौपीन और दंड उतरवा लिया जाता है। उसके शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाए जाते हैं तथा वह पीताम्बर पगड़ी मुकुट और अलंकार धारण कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। नंबर 13 विवाह। हिंदू सामाजिक जीवन में विवाह भी एक संस्कार ही है। पाश्चात्य दृष्टिकोण की तरह हिंदू सामाजिक दृष्टिकोण विवाह को काम पूर्ति का साधन नहीं बल्कि उसे समाजीकरण के लिए उसे एक संस्कार मानता है। वेदा अध्ययन अर्थात विद्या अध्ययन के बाद विवाह संस्कार संपन्न किया जाना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ ब्रह्मचारी का सुयोग कन्या से दाम्पत्य जीवन में बांधना विवाह संस्कार है। इसको संपन्न करने से पूर्व अनेक बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे लड़के लड़की का गोत्र, गुण और उनकी क्षमता तथा मुहूर्त। सामान्यतः विवाह में जाति महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्व के रूप में है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें सबसे उत्तम ब्रह्मा विवाह माना जाता है। इसमें वर का संस्कार कर उसे कन्या दान में दे दी जाती है। विवाह संस्कार के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले स्त्री पुरुष धर्मानुकूल की गार्हस्थ जीवन बिताने के लिए अग्नि के समक्ष यज्ञ कर यह संस्कार संपन्न किया जाता है। यह तीनों ऋणों से ऊर्ण होने वाला संस्कार और साधन है। भोग से संयम की ओर ले जाना इसका लक्ष्य है। नंबर 14 वानप्रस्थ। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद उनका जीवन के तृतीय चरण में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए वानप्रस्थ संस्कार किया जाता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। नंबर 15 संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हुए जब व्यक्ति अपने को लोभ मोह और पक्षपात से मुक्त कर लेता है, तो वह संन्यास आश्रम में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने को सांसारिक जीवन से ऊपर कर लेता है। इस आश्रम में प्रवेश से पूर्व जो संस्कार किया जाता है उसे संन्यास संस्कार कहते हैं। इसमें मंत्रों के साथ व्यक्ति का यज्ञोपवीत और उसके केस जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। यह मानसिक दृष्टि से संसार को छोड़ने वाला संस्कार होता है। नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। हिंदू सामाजिक जीवन में मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया को भी संस्कार माना जाता है तथा वह विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। मृत्यु के बाद शरीर को चंदन की लकड़ी पर रखकर भस्मांत शरीरव के उच्चारण के साथ चिता में अग्नि प्रज्वलित करने की क्रिया को दाह संस्कार कहा जाता है। शव के जल जाने के बाद घर में दसवां या तेरही की जाती है, जिसमें परिवार मित्रों ब्राह्मणों आदि को भोजन कराया जाता है। संस्कारों के उद्देश्य या महत्व भूमिका। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार संस्कारों का उदय सुदूर अतीत में हुआ था और कालक्रम के अनेक परिवर्तनों के साथ वे आज तक जीवित हैं। भारतीय दर्शन नैतिकता, आध्यात्मिकता, आंतरिक शुद्धता और व्यक्ति के समाजीकरण पर बल देता है। संस्कार ऐसे अनुष्ठान है जो व्यक्ति को आंतरिक दृष्टि से शुद्ध बनाकर उसे विभिन्न मंत्रों को संपन्न करने के योग्य बनाते हैं। युन यज्ञों के जरिए वह विभिन्न ऋणों से उड़ होता है तथा समाज के प्रति अपने विभिन्न कर्मों का पालन करता है। संस्कार मात्र धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान है जो हिंदू सामाजिक जीवन के प्रमुख तत्व हैं। ये सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होते हुए हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हो गए हैं। ये व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू संस्कार अनायास नहीं रखे गए हैं। विद्वानों ने निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। नंबर एक, व्यक्तित्व का विकास। कतिपय आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना इन संस्कारों का उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास का तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक तथा चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति का विकास। व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति का समाजीकरण अर्थात उसके और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। हिंदू संस्कार निर्धारित आदर्शों और प्रतिमानों के अनुरूप व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते हैं। हिंदू शास्त्रकारों ने इस संस्कारों के जरिए कतिपय आदर्शों और प्रतिमानों की स्थापना कर व्यक्ति की आवश्यक स्वच्छंदता पर रोक लगाकर समाज में संगठन, एक रूपता और एकात्मकता स्थापित करने का विधान किया है। व्यक्ति की आवश्यक स्वच्छंदता पर रोक लगाकर उसके व्यक्तित्व के इस प्रकार विकास की व्यवस्था की है कि वह अधिक से अधिक समाजीकरण की तरफ अग्रसर हो। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो इन संस्कारों से अछूता बचा हो। इसलिए डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि जिस प्रकार चित्रकला में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के रंगों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चरित्र निर्माण भी विभिन्न संस्कारों द्वारा होता है। नंबर दो, भौतिक विकास। मूलतः आध्यात्मिक होते हुए भी हिंदू संस्कृति ने भौतिक समृद्धि की भी उपेक्षा नहीं की है। उसने इसे जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार किया है। हिंदू संस्कार केवल व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करते बल्कि वे भौतिक विकास के उद्देश्य की भी पूर्ति करते हैं। हिंदू संस्कारों में देवी देवताओं की पूजा और अर्चना का विधान है। हिंदुओं का विश्वास है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप धन, पुत्र, शक्ति, बुद्धि तथा अन्य भौतिक साधनों की उपलब्धि होती है। नंबर तीन, आध्यात्मिक विकास। मूलतः हिंदू संस्कृति का आधार अध्यात्म है। मौलिक रूप से आध्यात्मिक विकास ही उसका लक्ष्य है। मौलिक तथा व्यक्तित्व संबंधी विकास पर यह इसी उद्देश्य से बल देता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। आध्यात्मिक विकास ही संस्कारों का मुख्य लक्ष्य है, ताकि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। हिंदू दर्शन के अनुसार मोक्ष ही मानव जाति का अंतिम लक्ष्य है। संस्कारों के जरिए आंतरिक रूप से शुद्ध होने के कारण मनुष्य ईश्वर मिलन का अधिकारी हो जाता है और वह अनेक यज्ञ करता है जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। नंबर चार, नैसर्गिक वृत्तियों की अभिव्यक्ति। कतिपय नैसर्गिक प्रवृत्तियों की व्यवस्थित और संयत ढंग से अभिव्यक्ति भी संस्कारों का उद्देश्य है। राग, द्वेष, घृणा, सुख और दुख मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं। राग, सुख और दुख की संयत ढंग से अभिव्यक्ति की संस्कारों के माध्यम से व्यवस्था की गई है। अधिकतर संस्कारों को संपन्न करते समय मनुष्य के रागात्मक संबंधों और उसकी सुख की भावना की व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति रहती है। अंत्येष्टि संस्कार के समय उसके दुख की संयत ढंग से अभिव्यक्ति होती है। नंबर पाँच, अशुभ प्रभावों से सुरक्षा। अशुभ प्रभावों अर्थात भूत प्रेतादि दुष्प्रभावों से रक्षा भी इन संस्कारों का उद्देश्य है। इन संस्कारों के समय के मंत्रों और यज्ञों द्वारा इन बात का विधान किया गया है कि ये अशुभ तत्व अपना प्रभाव न डाल सके। संस्कारों के माध्यम से आंतरिक शुद्धता का जो विधान किया गया है उसके पीछे इन तत्वों से रक्षा भी एक लक्ष्य है। केवल भूत प्रेतादि से सुरक्षा ही नहीं बल्कि अशुभ विचारों से बचाव भी इन संस्कारों का उद्देश्य है। इसके जरिए व्यक्ति आंतरिक रूप से शुद्ध होता है, जिसे अशुभ विचार उससे दूर रहते हैं। अशुभ विचार से मुक्त होने के कारण वह कर्तव्य विचित्र नहीं हो पाता है। नंबर 6, आत्मविश्वास पैदा करना। व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास पैदा करना भी इन संस्कारों का लक्ष्य है। विभिन्न संस्कारों तथा उनको संपन्न करते समय किए जाने वाले पूजा पाठ से व्यक्ति के मन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने का विश्वास पैदा होता है। इन्हें संपन्न कर उसे ईश्वर का विश्वास की अर्चना से उसे मंगलमय भविष्य का विश्वास होता है। निष्कर्ष, मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य का चतुर्दिक तथा मंगलमय जीवन ही संस्कार का उद्देश्य है। वे इसकी अपने ढंग से पूर्ति करते हैं। हिंदू सामाजिक जीवन में संस्कारों की उपयोगिता अथवा महत्व। संस्कारों के कुछ प्रमुख महत्व निम्न आधारों पर स्पष्ट किए जा सकते हैं। नंबर 1, समाजीकरण में सहयोग। समाजीकरण का प्रथम सोपान परिवार ही माना गया है और हिंदू समाज इन्हीं पारिवारिक संस्कारों की कार्य प्रणाली के माध्यम से इस प्रक्रिया को अधिक सरल बना देता है। संस्कार वे माध्यम बनते हैं जिनके द्वारा हिंदू व्यक्ति तथा सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अनुकूलन होता है। गर्भाधान तथा पुंसवन जहां पति पत्नी के संबंधों को अधिक सुदृढ़ करते हैं, वहीं सामाजिक दृष्टि से संतानोत्पत्ति के प्रति जागरूक तथा इसकी आवश्यकता से भी वे परिचित होते हैं। सीमांतोन्नयन माता का शिशु के प्रति मंगल भाव पैदा करता है। जन्म के पूर्व भावी शिशु के प्रति किसी अनिष्ट की आशंका माता व शिशु के संबंधों को और गहरा कर देती है। यही कारण है कि गर्भवती स्त्री प्रत्येक प्रतिबंध को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। जात कर्म पिता के शिशु के प्रति उत्तरदायित्व भाव को विकसित करता है। नामकरण षष्ठी तथा निष्कमण बालक के संबंधी जनों तथा अन्य निकट नातेदारों से पारिवारिक संबंध मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। अन्न प्राशन, चूड़ाकरण, विधा विद्या आरंभ, उपनयन तथा विवाह स्वयं बालक को समाज के अनुरूप ढालने के उत्कृष्ट माध्यम सिद्ध होते हैं। नंबर 2, संयमित जीवन दर्शन। प्रत्येक समाज अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी परंपरा परिस्थिति तथा समय के अनुसार करता ही है, किंतु हिंदू समाज ने संस्कारों के माध्यम से ऐसी लक्ष्मण रेखा वहाँ खींच दी है जहाँ सीमाओं उल्लंघन की संभावना समाज की संस्कृति पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। संस्कारों ने हिंदू समाज को जो जीवन दर्शन दिया है वह आत्मानुशासन तथा संयम का उत्कृष्ट उदाहरण है। उदाहरण अर्थ पति पत्नी संबंधों में संतानोत्पत्ति केवल सहवास का प्रतिफल बनकर ना रह जाए, इसलिए गर्भाधान जैसी पूर्ण जैविक प्रक्रिया को भी धर्म के साथ जोड़ा गया। प्रोफेसर वी के रमन की मान्यता है कि हिंदू विवाह स्वर्ग में तय होते हैं। इसी मान्यता ने विवाह संबंधों को मर्यादित तथा दीर्घजीवी बनाया है, क्योंकि प्रत्येक पति पत्नी उसको तोड़ने की कल्पना से ही भयभीत नहीं रहते अपितु संबंधों की दीर्घ आयु से परिचित होते हुए पार्श्विक तथा वासनात्मक वृत्तियों में लिप्त नहीं रहते। वे जानते हैं कि जो भी जीवन साथी मिला है ना तो वह बदला जा सकता है ना ही छोड़ा जा सकता है। नंबर 3, उत्तरदायित्व का बोध। हिंदू संस्कार मनुष्य को अपने जीवन में पग पग पर उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। इन संस्कारों का प्राविधान इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक संबंध, प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कर्म के प्रति निष्ठा व उत्तरदायित्व का भाव पनपे। प्रत्येक संस्कार गर्भाधान के अतिरिक्त प्रकट रूप से कई लोगों की उपस्थिति में होते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति उस कार्य का महत्व स्वीकार करता है। व्यक्ति जिस कर्म को स्वीकृति एवं बेहद समुदाय के सामने करता है, उससे विमुख होने से होने में उसे गलानी व संकोच का अनुभव होता है। नंबर 4, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास। संस्कारों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के कारण बाल्यकाल से ही उनकी आवश्यकता तथा महत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है, फलस्वरूप सांस्कृतिक पक्ष अधिक सुदृढ़ हो जाता है। ये सभी संस्कार व्यक्ति को आयु तथा लिंग के अनुसार व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे समयानुसार समस्त जैविक मानसिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और व्यक्ति अकाल तथा असमय भ्रष्ट तथा अनीतिगत व्यवहार नहीं करता। अप्रत्यक्ष रूप से संस्कार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष प्रबल करने में सहयोग सिद्ध होते हैं। नंबर 5, भावाभिव्यक्ति के माध्यम। हिंदू संस्कारों के माध्यम से रौद्र रस के अतिरिक्त शेष सभी रसों का उद्वेग प्रकट करने का समय सबको समान रूप से मिलता है। उदाहरण रात पुंसवन तथा गर्भाधान वात्सल रस के प्रतीक हैं। दाह संस्कार करुण तथा वियोग श्रृंगार की रस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। उपनयन शांत रस का प्रतीक है तथा विवाह संस्कार में तो लगभग सभी रसों के उद्वेग प्रकट होते हैं। नंबर 6, आध्यात्मिकता। प्रत्येक संस्कार के पश्चात व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका जीवन संस्कारमय है तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। वह इस भाव की अनुभूति करता है कि कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है जिसे प्रसन्न करने के लिए ही ये संस्कार किए जाते हैं अथवा जिसके भय से संस्कार संपन्न किए जाते हैं। फलस्वरूप उसे जीवन की नश्वरता क्षण भंगुरता तथा निस्सारता का ज्ञान होता है। जीवन के प्रति आकर्षण कम होता है तथा कर्तव्य बोध ही शेष बचता है। निष्काम भाव से कर्म की पूर्ति ही अध्यात्म का चरम बिंदु है। आत्मा पर अधिकार की यह स्थिति संस्कारों द्वारा ही प्राप्त होती है। नंबर 7, वैज्ञानिकता, तर्क संगत। हिंदू संस्कारों को भले ही धार्मिकता के नाम पर अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता से जोड़ दिया जाता हो, किंतु कुछ संस्कारों का अपना वैज्ञानिक तथा तर्क संगत महत्व भी है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। गर्भा संस्कार तो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर ही आधारित है। आज का चिकित्सा शास्त्र भी इसी मत का प्रतिपादन करता है कि गर्भधारण करने के लिए ऋतु स्राव के पश्चात 10वें दिन से 1 सप्ताह का समय उपयुक्त होता है। हिंदू संस्कार भी इसके लिए 16वें दिन तक का समय निर्धारित करता है। निष्क्रमण संस्कार भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि प्रसव के पश्चात माता को खोई हुई शक्ति प्राप्त करने में कुछ समय लग ही जाता है तथा साथ ही साथ लगभग 40 दिन तक चलने वाला अनियमित स्राव भी उसकी स्वच्छंदता में बाधक होता है, अतः उसे पूरा आराम देना अनिवार्य होता है। नवजात शिशु के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता के गर्भ के वातावरण से बाह्य संसार एकदम अलग होता है, अतः उसका शरीर जब तक बाह्य वातावरण से अनुकूलन की स्थिति में सक्षम ना हो जाए, उसका बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 8, मनोरंजन। गर्भाधान तथा दाह श्राद्ध संस्कार के अतिरिक्त शेष संस्कारों के अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान पर्व त्योहार आदि के रूप में संपन्न होते हैं, अतः मनोरंजन भी प्रदान। हिंदू संस्कार एक आधुनिक दृष्टिकोण। वर्तमान संदर्भों में जब हम आज के वैज्ञानिक युग परिवेश तथा जीवन पद्धति पर दृष्टि डालते हैं, तो हिंदू जीवन के 16 संस्कार अव्यवहारिक अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय तथा अप्रचलित प्रतीत होते हैं। चाहे अनचाहे कुछ लोग इन्हें संपन्न अवश्य करते हैं, किंतु अनेक कारणों से इनका प्रचलन अब ग्रामीण समुदाय में भी कम होता जा रहा है। नंबर 1, जादुई शक्तियों के प्रति अविश्वास। आज का सामान्य व्यक्ति भी जादू को एक कला मानता है, ना कि शक्ति। भूत प्रेत टोना टोटका अधिकतर ग्रामीण परिवेश तक ही सीमित है, अतः जात कर्म चूड़ा कर्म तथा सीमंतों नैन जैसे संस्कारों पर से व्यक्ति का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। जो ऐसी शक्तियों पर विश्वास करते भी हैं, वे इस मानता को स्वीकार नहीं कर पाते कि संस्कारों के बल पर जादू टोने से बचाव किया जा सकता है। नंबर 2, अनास्था। ईश्वर तथा अन्य अलौकिक शक्तियों के प्रति अनास्था के कारण आज का समाज इन संस्कारों को कम महत्व देता है। इस अनास्था के दो कारण हैं। प्रथम तो विज्ञान, जो ईश्वर जैसी किसी शक्ति को नहीं मानता। द्वितीय हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता, जो एक साधारण व्यक्ति का विश्वास जीतने में असमर्थ रहती है। समृद्धि संस्कारों से नहीं अपितु धनोपार्जन से मिलती है, यह एक कटु सत्य है जो आज के महंगाई के जमाने में व्यक्ति को स्त्री आस्था से विमुख कर देता है। नंबर 3, कर्म कांड। संस्कार का व्यवहारिक स्वरूप और आध्यात्मिक कर्म कर्म कांड युक्त अधिक हो गया है। कर्म कांड में भौतिक पक्ष अधिक प्रबल होता जा रहा है, अतः उन्हें दिखावा मानकर उपेक्षित किया जा रहा है। अब उपनयन केवल विवाह की सम्मति के लिए किया जाता है। विवाह के अवसर पर पुरोहित द्वारा संस्कृत के श्लोकों का गलत उच्चारण करने पर भी विवाह संपन्न होता है और वर वधु को वचनों के आदान प्रदान में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। मशीन की भांति सभी तथा कथित मूल्य कृत्य पूरे किए जाते हैं। नंबर 4, आर्थिक अभाव। बढ़ती हुई महंगाई के युग में इन संस्कारों के कारण व्यक्ति पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, अतः वह इस ओर अधिक उदासीन होता जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति चाहते हुए भी संस्कारों को संपन्न नहीं कर पाता। ये संस्कार परंपराओं में बधे व्यक्ति को दोहरी मार देते हैं। संस्कार के अनुष्ठान पर होने वाला व्यय तो स्वाभाविक होता है, किंतु ब्राह्मण को दान, प्रजा का तथा रिश्तेदारों का नेग देना ही व्यक्ति को बोझ बन जाता है। अतः ना रहेगा बास, ना बजेगी बासी के आधार पर व्यक्ति संस्कारों को संपन्न ना करके इसके अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति पाता है। नंबर 5, ब्राह्मणीकरण। हिंदू संस्कारों का पूर्णतः ब्राह्मणीकरण भी इनका प्रचलन में बाधक हो रहा है, क्योंकि गर्भाधान के अतिरिक्त सभी संस्कारों में ब्राह्मणों को वस्त्र, भूषण तथा भोजन देने के नाम पर अन्य वर्णों को लगभग लाचारी में यह दायित्व पूरा करना पड़ता है। जातिवाद तथा जाति संघर्ष के कारण भी कुछ लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रदान करने के पक्षधर नहीं होते हैं और इस कारण संस्कारों की उपेक्षा करते हैं। नंबर 6, विषमता। सैद्धांतिक रूप से हम इन संस्कारों को हिंदू संस्कार कहते हैं, किंतु आज का शिक्षित वर्ग जब यह प्रश्न पूछता है कि हिंदू संस्कार समस्त हिंदुओं पर एक समान लागू क्यों नहीं होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए पृथक नियम तथा कर्म क्यों हैं, शूद्रों के साथ भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है, तो उनका उत्तर हमारे शास्त्रों, विचारकों या संस्कार समर्थों के पास नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात समता का नारा बुलंद करने वाले इस देश में विषमता के साक्षात प्रमाण ये हिंदू संस्कार व्यक्ति को सहज ही आकर्षित करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। नंबर 7, अनैच्छिक अनिवार्यता। संस्कारों के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए उन्हें संपन्न करना सामाजिक तथा धार्मिक रूप से अनिवार्य हो जाता है, भले ही वह असमर्थ अथवा अनिच्छुक हो। उदाहरणार्थ ग्रामीण परिवेश में अधिकता यह देखने को मिलती है कि जिस परिवार को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उसे किसी सदस्य की मृत्यु पर ऋण लेकर महाब्रह्मांड तथा ब्राह्मणों के भोज का प्रबंध करना पड़ता है। चाहे परिवार के सदस्यों की अनिच्छा स्पष्ट ही प्रकट क्यों न हो रही हो, इन कारणों से व्यक्ति कर्जे में डूबे लोगों का उदाहरण सामने रखकर ऐसे संस्कारों की मान्यता अस्वीकार कर देता है। नंबर 8, संस्कृत भाषा की दुरूहिता। संस्कारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, मंत्र आदि संस्कृत ही रही है। सामान्य व्यक्ति धीरे धीरे संस्कृत को समझने में असमर्थ होता गया और तब विधि विधान केवल पुरोहित या ब्राह्मण तक सीमित रह गए, क्योंकि अर्थ ना समझ पाने के कारण सामान्य व्यक्ति की दिलचस्पी उन मंत्रों व अनुष्ठानों में न रही। सनय सनय यह संस्कार एक लीक परंपरा तथा अनिवार्यता के द्योतक बनकर ही रह गए। कुछ समय तक तो यह भाव बना रहा, सब करते हैं अतः हमें भी करना होगा या करना चाहिए, किंतु जब ये धारणा अधिक बलवती हो गई कि जिन कृत्यों का अर्थ, महत्व तथा उपादेयता हमारे जन जीवन से नहीं होगी, हम उन्हें नहीं करेंगे। निष्कर्ष। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संस्कारों का अपना आध्यात्मिक महत्व भले ही हो, सामाजिक व्यवस्था में वे भले ही सहायक हों, किंतु भारतीय जनमानस में उनके प्रति आस्था तथा महत्ता का विश्वास इन किन कारणों से लुप्त होता जा रहा है।